हम सभी के समक्ष आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी पधारे हैं। साकार मम्मा बाबा के साथ जो पले, साकार मम्मा बाबा की भासना आज हमें भी दे रहे हैं, ऐसे महान हस्ती का हम करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। बाप दादा के इस बेहद यज्ञ में संपूर्ण समर्पित अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणा स्रोत बाबा की स्मृति दिलाने वाले उदाहरण मूर्त आदरणीय रमेश भाई जी, आप ब्रह्मा कुमारी वर्ल्ड स्पिरिचुअल ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं, आप जुरिस्ट विंग के राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन तथा सेक्रेटरी हैं, स्पार स्पिरिचुअल एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर के चेयरपर्सन हैं। जो हमने कल बाबा की मुरली सुनी तो उसके सूक्ष्म राजों को समझाने और सूक्ष्मते सूक्ष्म बातों को बिल्कुल सहज और सरलता से हमारे सामने रखने के लिए भ्राता जी पधारे हैं। हम सभी अभी बाबा के कल के मुरली से भ्राता जी के द्वारा लाभान्वित होंगे। आदरणीय रमेश भाई जी,
ओम शांति। कल रात को तो बाबा ने भी हम बच्चों को नए वर्ष की बधाइयां दी, मैं भी आज अपनी ओर से आप सबको जो यहाँ सन्मुख में सुन रहे हैं, जो शांतिवन परिसर में भी है और जहाँ और भारत के विभिन्न सेवा केंद्रों पर जो भी बहन भाई आज का ये क्लास सुन रहे हैं, उन सबको नए वर्ष की बहुत बहुत वादाया हो, वादाया हो, वादाया हो। और उम्मीद रखते हैं कि जो बाबा ने कल हम सब बच्चों के आज के भविष्य के लिए, वर्तमान भविष्य के लिए जो भी बातें कही, वर्तमान पुरुषार्थ के लिए जो बातें कही, वो बाबा का पुरुषार्थ का इशारा जो भी है, जो भी हम बच्चों को लक्ष्य दिया हुआ है, उस प्रकार से उसका लक्षण धारण करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करेंगे। कल की मुरली आप सबने सुनी। मेरा अनुभव ऐसा है कि नए वर्ष में बाबा अभी रिजल्ट देखना चाहते हैं। कल बाबा ने एक बार मुरली में भी कहा कि बाबा रिजल्ट देखना चाहते हैं, कहा रिजल्ट देखना चाहता है। तो इस प्रकार से बाबा जो रिजल्ट देखना चाहता है, इसका मतलब ये हो गया कि अभी क्या वर्तमान समय जो भी है, वर्तमान भविष्य का समय जो भी आने वाला है, उसके पहले जो भी ज्ञान सुना, अभी तक हमारी जो भी सेवाएं जो थी, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं मैसेज ओरिएंटेड गॉडली सर्विस, अर्थात संदेश देने के लिए कि परमात्मा बाप आए हुए हैं, परमात्मा का परिचय का सारा प्रोग्राम होता है, ज्ञान भी उसी दृष्टिकोण से सुनाते हैं, ज्ञान ओरिएंटेड भी सेवाएं जो थी, योग ओरिएंटेड भी सेवाएं जो थी, धारणाएं ओरिएंटेड सेवाएं जो थी, वो सब तो होती थी, वो करते थे। अब सेवा का लक्ष्य जो है, दिन प्रतिदिन बाबा जो है हम बच्चों को सेवा का लक्ष्य में परिवर्तन कराता है, आगे बढ़ाता है, आगे लेके जाता है, क्योंकि बाबा जानते हैं कि हम बच्चों को ही अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है और जितना हम श्रेष्ठ बनाएंगे उतना ही हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनेगा। तो श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हम बच्चों को जो बाबा प्रेरणाएं दी हुई है, तो उसके आधार पर ये बात सबको ध्यान में रखने की है कि अभी क्या ईश्वरीय सेवा का अभिगम जो भी है इस नए वर्ष से, उसके आगे से जो भी नया वर्ष का अभिगम जो भी है, उसके अंदर बाबा का रिजल्ट ओरिएंटेड कि हमको कुछ करके दिखाना है। करके दिखाने के लिए किसके दिखाने का है? अपने आप को ही दिखाने का है। तो इस प्रकार से अपने आप को दिखाने का, अपने आप को पुरुषार्थ करने का, ये सारी बातें जो है वो इसको हम सुन ले, धारण करें तो अच्छा है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि इस आगे चल करके जो समय आने वाला है, बाबा ने पहले से ही सावधानी दे दिया है, त्रिकालदर्शी बाप है इसलिए बता सकता है। बाबा ने कहा है आगे चल करके जो समय आने वाला है उस समय को देखकर हर एक संकल्प में हर रोज दृढ़ता चाहिए। रिजल्ट देखो तो संकल्प किया वो कहाँ तक पूरा हुआ, रिजल्ट देखो हाँ कि जो संकल्प किया वो कहाँ तक पूरा किया हुआ है, क्योंकि आगे वाले आने वाले समय जो है, समय के लिए समय की पहचान आपको हम बच्चों को पहले दे देते हैं, समय के लिए सावधानी हम बच्चों को दे दिया है और उसके आधार पर जो भी हमको करना चाहिए वो करना चाहिए, जो करेगा। बाबा ने कल भी हिम्मत की बताई, हिम्मत बच्चे हिम्मत है बच्चे तो मजे थे बाप, इस प्रकार से हम भी ये कहेंगे कि जो करेगा तो पाएगा। इसलिए बाबा कहता तो है, बाबा कहता है कह सकता है मार्गदर्शन दे सकता है, परंतु पुरुषार्थ जो है हम बच्चों को ही करना पड़ेगा। हम लोगों ने योग की प्रदर्शनी बनाई थी तो ब्रह्मा बाबा ने लास्ट पिक्चर खुद ने बना करके भेजा और उसके अंदर बाबा ने बहुत अच्छी बात की, मैं हमेशा ही उसको याद रखता हूँ। बाबा ने उसमें लिखा कि बच्चे आपका भविष्य आपका भाग्य आपके हाथ में है, आपका भाग्य न और कोई बना सकता है न बिगाड़ सकता है, आप अपने भाग्य के भाग्य विधाता है। तो ये हम जब भाग्य विधाता अपने भविष्य के हम ही हैं तो हमारे हाथ में है हमको कितना श्रेष्ठ अपना भाग्य बनाना है, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है सत्युग की दुनिया जो है उसके लिए वहां पर तो जो ही जा सकेंगे जिन्होंने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया होगा, जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाया होगा उतना ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है, विश्व महाराजा विश्व महारानी का भी पद मिल सकता है, महाराजा महारानी का भी पद मिल सकता है, साहूकार का भी पद मिल सकता है, तो प्रजा का भी पद मिल सकता है, हमारे हाथ में है। हमको ये चार बातें जो है कि विश्व महाराजा और महारानी उनका राजाई परिवार जो है उसके अंदर भी हम सदस्य बन सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, वो सब हमारे ही हाथों में है। तो उस दृष्टिकोण से बाबा की मुरली को हम कल्स की मुरली को समझे कि रिजल्ट ओरिएंटेड के बाबा रिजल्ट देखना चाहते हैं कि जो संकल्प किया वो संकल्प कहाँ तक सफलता के रूप में उसका अनुभव किया है। बाकी हमारे राजू भाई ने जो भी उसके मुरली का टाइटल जो है बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि पुराने वर्ष की विदाई के साथ स्वप्न मात्र भी जो कमजोरी है उसे छोड़ने तथा उमंग उत्साह गुण उमंग उत्साह से गुण धारण करने का दृढ़ता संपन्न संकल्प करके सदा वाहवा रहना, रोज अमृत वेले इस संकल्प को दोहराना, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी। तो इस प्रकार से इसके अंदर सब कुछ आ गया। बाबा इस सीजन के अंदर हर समय पर नई नई बातें करते रहते हैं। अब तक जितनी भी पिछले सालों में पिछले मुलाकातों में मुरली किया उसमें बाबा मुरली स्टार्ट ही करते थे, चारों ओर के बच्चों को इस प्रकार से करके चारों ओर के बच्चों के कनेक्शन में बाबा मुरली चलाते थे, शुरू करते थे। इस सीजन में हमने देखा कि हर समय बाबा मुरली की शुरुआत जो है प्रारंभ जो है वो अनेक अलग अलग तरीके से करते हैं, और हमने देखा कि पिछले सितंबर अक्टूबर में भी मुरली चली, उसके बाद नवंबर 15 दिसंबर 30 और दिसंबर 15 ये चार अव्यक्त मुरलियां जो चली उसके अंदर विभिन्न रूप से बातें कही थी, और कई जगह पर बाबा आए थोड़े टाइम पर मिल गए। तो इस प्रकार से जो पिछले चार समय मुलाकात के अंदर बाबा के दिव्य अवतरण के समय पर बाबा मिलन के कारण जो भी हम बच्चों का बाबा के लिए वो लेना था कि बाबा आप आते हो परंतु समय लेते नहीं हो, हमारा पेट भरता नहीं है, हमको तसल्ली नहीं होती है, तो उसकी तसल्ली को बाबा ने कल पूरी कर दिया ताकि कोई भी बच्चा बाबा को लेना नहीं दे कि बाबा आप आते हो परंतु हमारा हमको इतना जितना चाहिए इतना मिलता नहीं है। कल का भी देखिए बाबा गुलजार दादी स्टेज पर आए 7:44 को वापस आए और फिर बैठने करने के लिए दादियों ने उनको गुड विशेष दिया, वो सब करते हुए 7:48 को गुलजार दादी वतन में जाने के लिए हमारे रघु गीत भी बजाया और ताकि गुलजार दादी बाबा के पास वतन में जा सके। 7:53 को गुलजार दादी बाबा के पास गई। बाबा की प्रवेशता 7:58 को आई हुई। 7:58 को आकर के बाबा ने बहुत दृष्टिक दिया। 7:58 से 8:09 अर्थात कल बाबा ने 11 मिनट हम बच्चों को दृष्टि दे करके दृष्टि से शक्ति दृष्टि से हमारी वृत्ति कृति आदि से तभी श्रेष्ठ हो जावे इसका प्रयत्न किया। 8:09 से बाबा ने जो मुरली शुरू किया। नॉर्मली क्या होता है कि बाबा मुरली जो चलाते थे अब तक यहाँ पर तो वो करीब 45 मिनट सुनाते थे। कल बाबा ने नॉन स्टॉप मुरली चलाई और नॉन स्टॉप मुरली चला करके 9:26 माना कि 1:17 नॉन स्टॉप मुरली चलाई 9:26। फिर बाबा ने गुड नाइट कहा और फिर महाराष्ट्र वालों का टर्न आदि की बात कर करके बाबा से जो कार्यक्रम बाबा के मुरली का जो था वो 9:31 पूरी हो रही थी। इतने में मुन्नी बहन ने कहा कि बाबा पहली बार वाले भी आए हुए पहली बार के बहुत आए हैं उनको बाबा ने 1 मिनट मिलकर के 9:32 पर चारों ओर के बच्चों को याद प्यार दिया और उसके बाद स्टेज पर कार्यक्रम चला 9:32 से और बाबा ने हम बच्चों से बाबा ने 10:10 विदाई लिया। और अगर इस प्रकार से गिनती करें तो 9:32 का 28 हो और ये 10:38 जो है बाबा का स्टेज का कार्यक्रम चला उसमें आप सब जानते हैं बाबा ने केक कटिंग भी किया और दीप प्रज्वलित भी किया नए वर्ष के लिए। इस प्रकार से कारोबार सारा ही कल चला। वो समय की घड़ी के मुताबिक हम देखें तो ये घड़ी का इस प्रकार का कार्यक्रम रहा। बाबा की मुरली में कल बहुत अच्छे भी शब्द थे तो बहुत खतरनाक भी शब्द थे। सबसे खतरनाक शब्द मालूम है कौन सा है बाबा के मुरली में सबसे खतरनाक हमारे लिए वो है लेकिन। बाकी बहुत अच्छी बात कर करके फिर बाबा लेकिन करके क्या कर देता है हम बच्चों को सावधान कर देता है लेकिन कर करके क्या क्या बोल देता है अपना जो भी करना होता है। इसलिए बाबा ने 5-6 लेकिन शब्द कह दिया तो इसलिए लेकिन शब्द का ऐसा क्योंकि बाबा ने बताया हाँ कि लेकिन में बहुत सी बातें आ जाती हैं। मैं बताऊं आपको इसके लिए बाप दादा विशेष अमृत वेले विशेष मदद देंगे क्योंकि बाप दादा को हर बच्चों से दिखाई देता है कि कोई बात छोड़ने चाहते हैं कोई बात बच्चे छोड़ने चाहते हैं लेकिन करके बाबा ने बहुत कुछ कह दिया और कहा भी सही लेकिन में बहुत बातें हैं। अब लेकिन में क्या क्या बातें होगी वो हम सब नक्की कर लें हमारे जीवन के साथ की लेकिन की बातें हैं। तो इस प्रकार से लेकिन 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 जब आता है मैं हमेशा ही डरता हूँ कि अभी लेकिन शब्द बोल करके कुछ बाबा हम बच्चों को सावधान करेंगे तो ये लेकिन शब्द सबसे ज्यादा मुरली के अंदर हमारे लिए सावधानी का शब्द है। उनसे कम सावधानी का शब्द जो है मेजोरिटी माना सब नहीं परंतु थोड़े माना मेजोरिटी माना 51-49 का भी परसेंटेज हो सकता है 95 और 5 का भी परसेंटेज हो सकता है। तो बाबा ने 4 कल मेजोरिटी शब्द भी यूज किया पहले से ही बता दिया कि आज बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश हो रहे हैं मेजोरिटी सभी बच्चे खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं मेजोरिटी दिखा रहे माना माइनॉरिटी खुशनुमा नहीं दिखाई देते होंगे। तो ये बाबा ने ये रिजल्ट भी सुना दिया आगे भी मेजोरिटी मेजोरिटी की बातें कही हुई है और कई बातें अच्छी अच्छी कही हुई है। वाह वाह शब्द, वाह वाह शब्द बाबा ने आप सबने याद किया, वक्त सबको पक्का भी हो गया होगा। 29 बार बाबा ने वाह वाह शब्द यूज किया है, 29 बार। फिर मेजोरिटी हमने बताया 4 बार। फिर बाप की मदद मिल सकती है, मदद मिल सकती है, बाबा ने मदद की ऑफर किया। हम क्या करते हैं, हमारे गुजराती में कहते हैं कि लक्ष्मी तिलक करने को आती है ना, तो मेजोरिटी हम मुख धुलाई करने के लिए जाते हैं, लक्ष्मी से तिलक नहीं करवाते। इसी प्रकार से बाबा ने कल 7-8 बार मतलब मदद की ऑफर किया कि मदद 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 मिल सकती है। परंतु क्या होता है, हम बाबा की मदद लेने में जितना सफल होना चाहिए इतना नहीं होता है। उसके अंदर भी कल बाबा ने मदद के बारे में 2 प्रकार की बातें कही, 7 बार कही है बात, उसमें से 5 बार मिल सकती है, मिल सकती है ऐसा ही कहा। एक बार कहा कि बाप मदद कर सकता है, और एक बार कहा बाप दादा मदद कर सकता है। बाप मदद करेंगे माना शिव बाबा ही मदद कर सकता है। दूसरी बार जो कहा बाप दादा मदद कर सकता है माना ब्रह्मा बाबा भी बाबा के साथ है, वो भी मदद कर सकता है। फिर अच्छा अच्छा, नॉर्मली क्या होता था, बाबा मुरली पूरी करने का होता है या कुछ टर्न करना होता है, बदली करना होता है, तो अच्छा शब्द यूज करते थे। बहुत मुरली में कम बार अच्छा शब्द होता है, या 1 या 2 बार अच्छा शब्द होता है। कल बाबा अच्छा अच्छा शब्द 6 बार बाबा ने बोला, 6 बार अच्छा 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 करके, जैसे अच्छा कहा, गुड नाइट कहा, ऐसा बहुत सी बातें कही अच्छी अच्छा अच्छा, फिर भी अच्छा गुड नाइट कहा, अच्छा अच्छा है नाम ही महाराष्ट्र है, इस प्रकार से अच्छा अच्छा 6 बार कहा। और फिर बाबा ने गुड नाइट शब्द 4 बार कहा, 4 बार गुड नाइट कहा। ये इसलिए से मैं कह रहा हूँ कि हमारे कई बहन भाई जो है ना मुरली के रहस्य को समझ नहीं सकते हैं, और मुरली के रहस्य को समझ नहीं सकते इसलिए क्या कहते हैं, साकार मुरली के बारे में भी यही कहते हैं कि बाबा के मुरली में रिपीटेशन बहुत होता है, वही मुरली रिपीट होती रहती है, उसका वही पॉइंट रिपीट होती है। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हम लोगों ने अभी तक बाबा और बाबा की मुरली का जो वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से, लॉजिकल तरीके से जो समझना चाहिए वो नहीं समझते हैं। बाबा रिपीट नहीं करते, परंतु क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक हथौड़ा, एक कील, एक नेल होता है, उसको दीवार में भी ठोकना होता है तो क्या होता है, हैमरिंग करना पड़ता है। एक बार हथौड़ा लगाया तो क्या कील अंदर बैठ जाएगी क्या, वो नहीं बैठेंगी। 8-10-15 बार हथौड़ा लगाने पड़ता है तब वो अंदर कील जो है वो दीवार में बैठ सकती है। स्कूल कील को भी बिठाने के लिए 10-15 बार हथौड़ा लगाना पड़ता है, हैमरिंग करनी पड़ती है। तो हम तो चेतन है, और हम चेतन के अंदर माया का इतना भी आवरण छाया हुआ है। आज भी जैसे बाबा ने कहा साकार मुरली के अंदर रावण के राज्य में है, तो रावण के राज्य में है तो इसलिए इन सब बातों के आधार पर, माया के कारण, रावण के कारण, इन सब बातों के बीच में बाबा का कार्य, बाबा के ज्ञान की बातें हम धारण करें, इसके लिए बाबा को हैमरिंग करना पड़ता है। वो ये ना समझे कि बाबा रिपीट करता है, इसलिए कल भी देखो बाबा ने वाह वाह करके कैसे सुन दी, कितनी बार, 26 बार कहा वाह वाह, वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, इस प्रकार से वाह वाह शब्द शुरू से ही कहा, पहले ही पहला पैराग्राफ में ही बाबा ने वाह वाह शब्द से शुरू कर दिया, इसलिए लगा कि बाबा आज मुरली के अंदर वाह वाह शब्द के बारे में ज्यादा कहने वाले होंगे। बाबा अपना मुरली का आने वाले शब्दों का इशारा दे देते हैं। बाबा ने जैसे कहा कि जैसे बच्चे स्नेह के प्लेन में पहुंचे हुए हैं, बाप दादा भी हर बच्चे की स्नेही मूर्त देख खुश रहे हैं, और क्या कहते हैं, वाह स्नेही बच्चे वाह। हाँ, तो पहले पहले ही शुरू कर दिया, वाह स्नेही बच्चे वाह, हर बच्चे के मस्तक में चमकती हुई खुशी दिखाई दे रही है, तो हर एक खुशनुमा बच्चे को देख बाप दिल में गीत गाते रहते हैं, वाह बच्चे वाह। आप देखा शुरू से ही बाबा ने वाह वाह की बात करना शुरू कर दी, ताकि हम अगर जो सावधान होकर के कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा बाबा की मुरली पढ़े और सुने तो लगता था कि बाबा आज भावा के बारे में कुछ ज्यादा कहने वाले हैं। और इसके अंदर भी बाबा ने कहा कि हरे के मस्तक में चमकती हुई बिंदी आत्मा दिखाई दे रही है। ये बाबा से सीखने का है। हम क्या करते हैं, सामने वालों को देखते भी है, हम सबको देखना तो पड़ता है, समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो शरीर को देखते रहते हैं। शरीर को देखते रहते इसलिए क्या होता है, शरीर के भार में, देह के भार में हम आ जाते हैं। बाबा से ये सीखने का है कि बाबा ने क्या देखा, बाबा ने हमारे शरीर को नहीं देखा, बाबा ने क्या देखा कि हर एक के मस्तक में चमकती हुई बिंदी आत्मा दिखाई दे रही है। ये प्रयोग, ये सावधानी, ये पुरुषार्थ हम सबको करने का है कि हम सामने वाले का शरीर न देखें। शरीर देखेंगे तो क्या होता है, शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। शरीर के आकर्षण में आ गए तो क्या होता है, आप सबको मालूम है ना, विश्वामित्र के सामने कौन आया, विश्वामित्र के सामने शास्त्रों में पढ़ा होगा, सुना होगा कि विश्वामित्र के सामने मेनका आई, क्या हो गया, शरीर को देखा और विश्वामित्र का पतन हो गया। हम सब इस प्रकार से हमारे अपने आप को बचाने के लिए अगर हमको कोशिश करनी है तो क्या करेंगे, सामने वाले की आत्मा को देखें। आत्मा को देखेंगे तो क्या होगा, शरीर के आकर्षण से हम मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ये हमारी बाबा ने जो कल इस प्रकार से कह करके हम बच्चों को एक रास्ता बताया कि देह अभिमान से मुक्त होकर के देही अभिमानी बनना हो, देही अभिमानी बनना हो तो क्या करना चाहिए कि सामने वालों की आत्मा, जो बिंदी रूपी आत्मा है उसको देखो। और उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भी देही अभिमानी बनेंगे और सामने वालों को देखते देखते हम भी उनके आत्मा को देख करके देही अभिमानी बन सकते हैं। फिर बाबा ने, बाबा कल कवि भी बन गए। कवि बन करके क्या करते हैं, कवि बन करके पोएटिक शब्दों के द्वारा बाबा कारोबार करते हैं। तो बाबा ने वो भी कल पोएटिक बन करके एक महावाक्य में कहा कि हरेक के दिल में दिलाराम दिखाई दे रहा है, द द द दिल में दिलाराम और दिखाई, एलिटरेशन भी कहो, रिपीटेशन भी कहो, इस प्रकार से दिल में दिलाराम। तो बाबा कैसे हम बच्चों को सिखाता है कि थोड़ा पोएटिक भी बनिए, खाली सूखा रूखा सूखा ज्ञान, रूखा सूखा व्यवहार नहीं कीजिए, पर थोड़ा पोएटिक बनने से क्या हो जाता है, पोएटिक बनने से क्या होता है, रमणीकता आती है। रमणीकता से क्या हो जाएगा कि हमारा भी जीवन व्यवहार अच्छा होगा और सामने वालों के साथ भी हम रमणीकता से व्यवहार करें तो क्या हो जाएगा, सामने वाला भी खुश हो जाएगा। तो इसलिए रमणीकता होनी चाहिए, जो बाबा ने इस प्रकार से दिखाया। और फिर भी बाबा ने फिर से कहा कि बाबा हर बच्चे को देख देख खुश हो रहे हैं और दिल में गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह, और हरेक के दिल में स्नेह समाया हुआ है, वो बाबा ने देखा। इस प्रकार से बाबा ने प्रीलिमिनरी, जिसको कहते हैं, बैकग्राउंड बना दिया कल की मुरली का। और उसके बाद मुरली के बाद अभी एक्चुअल मुरली का कारोबार शुरू किया। उसमें बाबा ने बताया कि सभी आज हम सभी यहाँ किस बात के लिए आए हैं, उसके लिए बाबा ने बताया कि सभी आज पुराने वर्ष को विदाई दे, नया वर्ष नैनों में समाया हुआ है, नया वर्ष नैनों में समाया हुआ है। देखो फिर यहाँ साहित्य आया कि पोएटिक आ गई। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बाबा जो है ना वो साहित्य का स्वामी है, शब्दों का भी स्वामी है। बाबा आध्यात्मिक फील्ड के अंदर इस प्रकार से एलिटरेशन मेटाफर्स आदि यूज करना बहुत कठिन बात है, स्थूल दुनिया में हो सकता है। कहते हैं कि कालिदास जो है उपमा देने में, मेटाफर्स आदि यूज करने में बहुत प्रसिद्ध थे। इस प्रकार से अव्यक्त बाप दादा जो भी है वो भी इस प्रकार से मेटाफर्स, सिमिली आदि आदि जो भी साहित्य का जिसको कहते हैं रसिकता का कहो, जो भी कहो, इसके अंदर एक्सपर्ट है। बाबा शब्दों का भी स्वामी है, साहित्य का भी स्वामी है। तो नए वर्ष नैनों में समाया हुआ है। और फिर बाबा को जो कहना था 8-10-15 बार रिपीट बाबा ने किया है, अलग अलग तरीके से किया। बात वही होती है, परंतु अलग अलग तरीके से कैसे कहना चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए, कैसे बताना चाहिए, वो बाबा से सीखने की बात है। हाँ, तो बाबा ने कहा आज के दिन अपने में कोई ना कोई विशेषता धारण कर साधारण को छोड़ा है, पहले पूछ लिया। हाँ, विशेषता को धारण करके साधारणता को छोड़ दिया है। नए वर्ष में अपने में कोई न कोई विशेषता जो पुरुषार्थी जीवन में आवश्यकता है, नए वर्ष में अपने में कोई न कोई विशेषता जो अपने पुरुषार्थी जीवन में आवश्यक है, वह संकल्प में और स्मृति में लाया है। और फिर बाबा ने फिर से कहा, ऊपर बताया साधारणता छोड़ विशेषता धारण करो, अब कहा पुराना छोड़ नया धारण किया है। बात वो ही होती है, परंतु शब्दों के रचना के अंदर नए तरीके से वही बात रखने का, तो बाबा से सीखने का। हमारे में जो भी आप भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, जिनों को भाषण करने की इच्छा होती है, भाषण की कला सीखने की इच्छा होती है, तो बाबा से इस प्रकार से सीखना चाहिए, जो वही बात होती है वो तो अलग अलग तरीके से दुनिया के सामने श्रोताओं के सामने कैसे रखा जाए, इसके कारण क्या होगा कि श्रोता को भी अच्छी बात लगेंगे। संस्कृत में भी कहा हुआ है वक्ता क्या करेगा, जब तक सामने श्रोता जो है वो आनंद से प्यार से स्नेह से सुनता नहीं है, तब तक वक्ता भी क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से बाबा ने नए तरीके से कहा वही बात, पुराना छोड़ नया धारण किया है। फिर वही बात आगे कही, हर एक ने अपने संस्कारों में कुछ नवीनता सोची है और धारण की है। अपने संस्कार प्रॉब्लम वहीं होता है, हम क्योंकि हमारे कई भाई बहन हमको मिलते हैं ना, कहते क्या करें हमारे पुराने संस्कार ऐसे है ना, तो हमारे पुराने संस्कार के कारण उसके हम क्या कहें गुलाम हो जाते हैं, हम अपने संस्कारों के अपने स्वभाव से इन सब बातों के गुलाम हो जाते हैं। और इसलिए क्या होता है, अंग्रेजी में भी कहा गया है कि वी सी थिंग्स नॉट एज दे आर बट एज वी आर, सामने वाली चीज कैसी भी हो परंतु हमारा स्वभाव संस्कार उस टाइम पर कैसा होगा उसके आधार पर ही हम चीज को देख सकते हैं। तुलसीकृत रामायण में इसकी बहुत सुंदर बात है कि हम जैसे हो गए उस प्रकार से हम देख सकते हैं। तुलसीकृत रामायण में जब राम जो है वन में जा रहे हैं तो उन्होंने जो फ्लावर्स देखे, वो फ्लावर्स जो थे तुलसीदास जी ने कहा कि सफेद रंग के थे, तो उसमें तुलसीदास कल रामायण में आता है कि वो उनकी जो भी बातें जो है हनुमान जी सुनते थे तो हनुमान जी ने कहा नहीं, वो फ्लावर्स जो थे ना वो लाल रंग के थे, सफेद रंग के नहीं थे। दोनों के बीच में डिबेट हो जाती है, जिन्होंने तुलसीगत रामायण पढ़ा होगा उनको मालूम होगा, दोनों के बीच में डिबेट होती है। तो दोनों कहते चलो हम श्री राम की उसको आह्वान करें, उसको बुलावे और उनसे पूछे कि वो फ्लावर्स जो आपने देखा, फूल जो आपने देखे, वो सफेद थे या पीले थे, लाल थे, क्या थे। तो फिर राम वहां उपस्थित होते हैं और राम कहते हैं आप दोनों सच है, ओरिजिनली सफेद फूल ही थे और सफेद फूल जो तुलसीदास जी ने लिखा वो ठीक है, परंतु उस टाइम पर हनुमान को क्रोध था, क्रोध के कारण क्या हो गया, क्रोध के कारण उसको वही सफेद फूल जो है लाल पीला दिखाई पड़ता था और लाल पीला होकर दिखाई पड़ता था, इसके कारण हनुमान जी ने कहा कि वो फूल लाल पीले थे, वास्तव में वो नहीं लाल पीले थे। जैसे आप जानते हैं किसी को पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होता है, मालूम होगा ना, जॉन्डिस हो जाता है तो क्या होता है, हमारी आंखों में आंखें पीली हो जाती है, उसके कारण क्या होता है, दुनिया सारी पीली दिखाई पड़ती है। तो पीली दिखाई पड़ती है अगर हम गॉगल्स पहन करके देखें तो क्या हो जाएगा, दुनिया हमारी बदली हो जाएगी। तो इस प्रकार से आंखें हमारी जो है धोखा न दे, इसके लिए क्या करना चाहिए, वो हमको धारण करना चाहिए कि हमारे संस्कार जो है, बाबा ने जो कहा संस्कारों में भी कुछ नवीनता सोची है, धारण की है। और एक पीछे बहुत विचित्र सवाल पूछा है, ये नहीं आता है बाबा ने, इसलिए बाबा ने पूछा, छोड़ना भी आता है, पुरानी चीज पुरानी बातों को छोड़ना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। इसलिए ही बाबा ने एक साकार मुरली में कहा हुआ है, भूतकाल जो है ना, हाँ भूतकाल को बच्चे छोड़ नहीं सकते हैं, और जब भूतकाल को छोड़ नहीं सकते उसको ही याद करते रहते हैं, तो बाबा ने कहा हुआ है साकार मुरली में हाँ कि भूतकाल जो है वो भूत बन करके सबको परेशान करता है। जब अगर हम भूतकाल को छोड़ते नहीं है, भूतकाल को भूलते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जब हम उनको छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वही भूतकाल, इसलिए तो उसका नाम ही है भूतकाल, जो काल हमारे सामने भूत बन करके आ सकता है, हमको परेशान कर सकता है। कारण यही है कि भूतकाल की बातें वो हम छोड़ नहीं सकते, याद रखते रहते हैं, और सामने वालों को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा हुआ है कि बाबा का हर एक बच्चा पुरुषार्थी है, और पुरुषार्थ के द्वारा समय प्रति समय वो आगे बढ़ना ही चाहता है। तो जब वो आगे बढ़ना चाहता है तो फिर उसने जो वर्तमान में जो पुरुषार्थ किया है, वर्तमान में जो उसने पुरुषार्थ के द्वारा अपनी स्थिति बनाई, उसको याद करो ना। पुरानी बात को याद करने से क्या फायदा? हम सब जो यहाँ बैठे हुए हैं उन सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, हम पहले भक्ति मार्ग में थे, हम भक्ति मार्ग में थे तो हमारे पास अनेक प्रकार की विकारों की बात थी, अनेक प्रकार की हमने गलतियां किया, अनेक प्रकार के जानते हैं समस्याओं में हम फंसे हुए थे, और इसके कारण बाबा कहते हैं कि नहीं, भूतकाल को याद नहीं करो। बाबा भी कहते हैं कि बाबा से ज्ञान में आने से पहले जो भी किया बाबा उसको माफ करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि वो तो कलयुग में सब यही गलतियां ही करते थे और तमाशा ही करते थे, इसलिए बाबा जो कहते हैं ना, इसलिए बाबा ने कहा छोड़ना भी आता है, ये छोड़ना भी आता है कह करके बाबा ने कहा कि भूतकाल की बातों को छोड़ना सीखो। जब तक छोड़ने का नहीं सीखेंगे तो क्या होगा? नई बातें धारण नहीं कर सकेंगे। अंग्रेजी में बहुत सुंदर कही है, भूतकाल को भूत कहा, वर्तमान को क्या कहा है मालूम है? अंग्रेजी में प्रेजेंट कहते, प्रेजेंट माना गिफ्ट। आज के नए वर्ष के दिन हम सब आपस में गिफ्ट बांटते हैं, देते रहते हैं, सौगात देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा हुआ है मुरली के, अंग्रेजी में भी कहा हुआ है कि वर्तमान जो है उसको प्रेजेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, सौगात के रूप में समझो, और इस वर्तमान के जीवन के आधार पर, वर्तमान के पुरुषार्थ के आधार पर, वर्तमान की बातों के आधार पर अपना श्रेष्ठ भविष्य बनाओ। तो इस प्रकार से वर्तमान की बातों को ध्यान में रखो, पुरानी बातों को भूलना सीखो। बहुत कठिन बात है, मैं आपको बताऊं, बाबा ने तो मुरली में कहा है कई बार कि फुल स्टॉप लगाना आना चाहिए, परंतु तो बच्चों को फुल स्टॉप नहीं लगाना आता है, उसके बदले में क्या करते हैं? हाँ बाबा ग्रामर भी सिखाते हैं, बाबा ने कहा है कि बच्चे फुल स्टॉप के बदले में क्या करते हैं, दो अन्य प्रकार के निशानी लगा देते हैं, एक है क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ और दूसरा एक्सक्लेमेशन आश्चर्य का, क्या अरे ऐसा हुआ करके होता है, उसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, और प्रश्नार्थ का तो आप सब जानते हैं। तो हम सब क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाने के बदले में एक्सप्लेनेशन एक्सक्लेमेशन, और हमारा जीवन के अंदर हम प्रश्नार्थ की बातें में क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं, और इसके कारण क्या होता है, जीवन के अंदर सुख शांति और समाधान नहीं आता है। जीवन में सुख शांति और समाधान लाना हो तो कंपल्सरीली ये बात रखो याद कि हमको फुल स्टॉप लगाना है, सामने वालों की भी क्षतियों को गलतियों को याद नहीं करना है, और वो भी आगे बढ़ रहा है, इस प्रकार की शुभ कामना और शुभ भावना सबको देना है। मैंने कई बार दादी जानकी की बात कही है, दादी जानकी ने कहा कि फुल स्टॉप लगाना माना क्या, फुल स्टॉप लगाना माना जो बीती हुई बात को बिल्कुल हमारे चित्त में भी ना आवे। हम भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, ये प्रभु हमारे अवगुण को चित्त में नहीं रखो, तो हम भी आए बाबा भी यही कहते हैं कि बच्चे औरों के अवगुणों आदि के जो चित्त में नहीं रखो, फुल स्टॉप लगाओ। तो इस प्रकार से फुल स्टॉप लगाने से बाबा दादी कहती है कि ऐसा फुल स्टॉप लगाओ कि वो बात फिर से आपकी स्मृति में, आपकी स्मृति में 5000 वर्ष के बाद आवे, 5000 वर्ष तक उसके ऊपर फुल स्टॉप लगा करके उसको स्मृति के भंडार में भर दो, परंतु अपने वर्तमान को भूतकाल की बातों के आधार पर परेशान नहीं करो। ये फुल स्टॉप लगाने की कला जो बाबा ने कल कहा ना, छोड़ना आता है तो छोड़ने की बात जो है वो सीखने की बात है। और ऐसे ही नया धारण किया है, नया धारण करना भी बहुत कठिन बात है। धारण तो कर लेते, बाकी की अभी भी बात के बाबा ने जो मुरली चलाई और नया धारण कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि हम सब नए की बातें करते रहते हैं कि हमको ये करना है, करना है, करना है, परंतु धारण नहीं होता है। नया धारण करना, पुरुषार्थ में नवीनता लाना, वो बहुत कठिन बात है। इसलिए बाबा ने कहा है, कहा कि बाप दादा हर एक के चेहरे में अभी इस समय स्नेह की, मिलन की झलक दिखाई दे रही है, मिलन की झलक दिखाई दे रही है। फिर बाबा ने वही बात नए तरीके से पूछी है। आप सभी ने कल का दिन की बातें, कल के दिन नया वर्ष आज शुरू हो गया, कल पुराना समाप्त तो होने वाला था, तो इसलिए बाबा ने पूछा है कि आज के सारे दिन में कुछ छोड़ा और कुछ धारण किया। छोड़ना था 2013 की छोड़ दिया, पुरानी बातें छोड़ दी, और नए वर्ष के लिए नई बात धारण किया। फिर बाबा ने कहा मेजोरिटी बच्चे, मैंने कहा ना मेजोरिटी बच्चे, वो भी एक शब्द थोड़ा हमारे को अटेंशन दिलाता है। बाबा ने कहा है कि मेजोरिटी बच्चों को इस समय खुशनुमा दिखाई दे रहे हैं, और कौन सा गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन हर एक बच्चे को कुछ छोड़ना भी है और कुछ नया, नया में बाबा ने फिर पहली बार एडिशन किया, नया गुण धारण करना है, नया गुण गुण धारण करना है, मतलब पुरानी बातों को छोड़ करके कुछ नया गुण धारण करना है। चार बातें होती है, आप जानते हैं, गुण है, शक्ति है, कर्तव्य है, और उसका पालन करने की बातें होती है, पुरुषार्थ की बातें होती है। तो इसलिए पहले क्या धारण करना पड़ेगा, गुण धारण करने का है। गुण धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणवान बन जाएंगे। गुण धारण करेंगे तो गुणवान बन जाएंगे, जैसे बाबा कहते हैं लक्ष्य धारण करेंगे तो लक्षण आ जाएंगे, इस प्रकार से गुण धारण करेंगे तो गुणवान बन जाएंगे। तो सोचा क्या छोड़ना है और क्या लेना है, क्या छोड़ना है क्या लेना है। फिर बाबा की अपनी चाहना भी होती है, परमात्मा को भी इच्छा होती है। हम हमारे ज्ञान में, शास्त्रों के ज्ञान में सुनने में आता था इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए, वो भी सिखाते हैं। साकार बाबा ने मुरली में एक बार कहा था कि इच्छा नहीं होना हो ही नहीं सकता, इच्छा नहीं हो ये भी एक इच्छा है, इच्छा नहीं हो ये भी एक इच्छा है, तो इसलिए इच्छा तो होगी, तो इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हो सकता है। और इस ज्ञान की बड़े में बड़ी खूबी यही है कि परमात्मा को भी इच्छा होती है। सृष्टि की रचना के बारे में शंकराचार्य ने भी यही कहा, स इच्छत, परमात्मा को सृष्टि रचना करने की इच्छा हुई, तो परमात्मा को भी इच्छा हुई, और इसलिए क्या हुआ, शंकराचार्य कहते हैं कि परमात्मा को जब इच्छा हुई, इच्छा हुई तो परमात्मा से उसका रूपांतर हो गया ईश्वर। ईश्वर माना उसके बाउंड्रीज होती है चारों बाजू, इस प्रकार से ईशा हो गई, वो भी है और इच्छा भी होती है। तो परमात्मा को जब इच्छा हुई, शंकराचार्य ने शंकर भाष्य में कहा है, इच्छा जब हुई तो इच्छा के आधार पर वो इस परमात्मा से ईश्वर बना। तो इस प्रकार से बाबा की इच्छा है, बाबा इच्छा बताते हैं, वहां बाबा की इच्छा इसलिए बताते हैं कि बाबा सभी बच्चों के चेहरे में सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखने चाहते हैं। ये बाबा की इच्छा है, कौन सी इच्छा है, सभी के चेहरे पर बेफिक्र बादशाह की झलक देखने चाहते हैं। बाबा हम बेफिक्र बादशाह नहीं बनते हैं, पर तो दूसरे प्रकार के बादशाह बनते हैं, मालूम है हम दूसरे प्रकार के बादशाह, कौन से बादशाह बनते हैं, सबको मालूम नहीं होगा, मैं ये बता देता हूँ। बेफिक्र बादशाह के बदले में क्या बनते हैं? बेपरवाह बादशाह। बात तो वही होते, बादशाह बनते हैं। एक है बेफिक्र बादशाह और दूसरा है बेपरवाह बादशाह। तो हमको क्या बनना है, बेपरवाह बनना है या बेफिक्र बनना है, ये सोच रहा। बाबा ने तो कल कह दिया कि सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन है, अटेंशन है कि आज के विशेष दिन दिल में कुछ छोड़ना है और कुछ धारण करना है। कुछ छोड़ना है, कुछ धारण करना है। और फिर बाबा सनातन प्रश्न पूछते हैं कि ये कर सकेंगे, ये कर सकते हैं। बाबा हैमरिंग करता रहता है कि ये करना है, छोड़ना है, कुछ धारण करना है। बाबा कहते हैं छोड़ने का और धारण करने का कर्तव्य कर सकेंगे। गलती बाबा की रोमणी मुरली बहुत रमणीक थी, पर साथ साथ सावधानी भी बहुत थी। क्या ये कुछ छोड़ना और कुछ धारण करने का कर्तव्य कर सकेंगे? और फिर बाबा ने हाथ उठाया और उठाने के लिए कहा जो कर सकेंगे करेंगे। और बाबा ने कहा सबके उमंग मस्तक में उमंग की लहरें दिखाई पड़ती है। और फिर बाबा ने क्या कहा, ये उमंग की जो बातें जो है उसके लिए बाबा ने कहा कि उमंग अभी का जो उमंग है सदा रहे। ये अभी का उमंग जो है, जब सबने हाथ खड़ा किया तो सबके मुख में सबका मुख बहुत हर्षित दिखाई पड़ता था, उमंग का उत्साही दिखाई पड़ता था। बाबा ने इसलिए कहा कि उमंग सदा ही रहे, इसका विशेष ध्यान रखना। और इसलिए फिर से दूसरी बात कही, वही बात अलग तरीके से कही कि अपने दिल में कोई न कोई विशेष उमंग लाओ। पहले ऊपर बता दिया कोई न कोई बात की धारणा करो, कोई न कोई बात की गुण कोई न कोई गुण धारण करो। अब कहा कोई न कोई विशेष उमंग में लाओ, उमंग लाओ। और यह उमंग सदा चेक करना कि उमंग रहा कि बदली हो गया। थोड़े समय के लिए उमंग होता है, जैसे कोई सिनेमा देखता है 3 घंटे के लिए उमंग रहता है, फिर खत्म हो जाता है। कोई शराब पीता है तो शराब पीता है तब क्या होता है, आपको मालूम है ना वो फेमस कहानी कि मिलिट्री के अंदर एक भाई काम करता था, तो उसके कमांडर ने कहा कि भाई तुम शराब छोड़ तो तुमको आगे का पोजीशन मिल सकता है। तो उसने कहा आगे की पोजीशन क्या दे सकते हो आप, मैं तो जब शराब पीता हूं तो मैं कमांडर इन चीफ सर सेनापति समझता हूं। इस प्रकार से हम सब भी ऐसे ही होते हैं, थोड़े समय के लिए होता है उमंग भूल जाते हैं, मतलब दुनिया की बातें भूल जाते हैं, उमंग में आते हैं। थोड़ा समय हमारे पास, जैसे वो दूध होता है ना, दूध उकाल उबलता है तो ऊपर आ जाता है, फिर जैसे बंद अग्नि बंद कर देते हैं तो फिर वो नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी ऊपर नीचे हमारी जीवन की दिनचर्या हो जाती है। और फिर क्या होगा, अगर गुण धारण करना है, करने का उमंग हो, इसके कारण क्या होगा, अगर गुण धारण करेंगे तो अवगुण खत्म हो ही जाएगा। बाबा ने तरीका बता दिया, अवगुण को दूर करने के लिए मेहनत नहीं करो, परंतु गुण धारण करो तो अवगुण ऑटोमेटिकली चला जाएगा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक ने एक बार हमको सिखाया कि एक ग्लास दिखाया, ग्लास के अंदर हवा भरी हुई थी, ग्लास के अंदर हवा भरी हुई थी, तो उन्होंने एक प्रयोग करके दिखाया कि ये ग्लास की हवा जो है निकालना है तो क्या करना चाहिए। हम सब बच्चे सोचने लगे कि ग्लास में से हवा कैसे निकाल सकते, हवा तो निकाल नहीं सकते, एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, सब कुछ होता है, तो हवा कैसे निकलेंगे। तो हमारे शिक्षक ने कहा बहुत आसान तरीका है, उसमें अंदर ग्लास के अंदर पानी डाला, जब पानी डाला तो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली हवा निकल गई। तो इस प्रकार से बाबा भी यहाँ कहते हैं, बहुत सरल उपाय बताया है। बाबा डॉक्टर भी है, वैद्य भी है, जो भी कहो वो भी है, और इसलिए इस दवाई अवगुण की बातें जो है उसकी दूर करने की दवाई क्या हो, उसके लिए बाबा कहते हैं गुण धारण करेंगे तो क्या होगा, अवगुण तो खत्म हो ही जाएगा। तो इसलिए अवगुण को खत्म करने के लिए गुण को धारण करो, गुण को धारण करेंगे तो अवगुण जो है, जैसे पानी का ग्लास में पानी डाला तो हवा ऑटोमेटिकली निकल गई, इस प्रकार से ये गुण धारण करेंगे तो अवगुण ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। फिर बाबा फिर वही बात कहते हैं कि बाबा खुश है सभी बच्चे कोई न कोई विशेष कमजोरी जो अब तक चाहते नहीं लेकिन आ जाती है। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में कमजोरी ना हो, बाबा भी कहते हैं कि आप नहीं चाहते हो, परंतु क्या होता है कमजोरी आ जाती है। तो इसी उसी को संकल्प कर धारणा को आज और अभी से दृढ़ संकल्प द्वारा छोड़ सकते हो। दृढ़ संकल्प हमारा नहीं होता है, दृढ़ संकल्प नहीं होता इसके कारण क्या होता है, जो हम सोचते तो बहुत है पर सोचते हैं परंतु क्या होता है, दृढ़ संकल्प नहीं होता। मैं हमेशा ही प्रोफेसर जॉनसन की कहानी सुनाता हूँ। प्रोफेसर जॉनसन करके जो है इंग्लैंड के बहुत नामी ग्रामी लेखक हो गए, बहुत नामी ग्रामी। तो रविवार के दिन वहां गए थे, चर्च में गए हुए थे, और उस दिन चर्च के अंदर जो है प्रीस्ट जो है उसने भाषण किया कि सिगरेट पीना बहुत खतरनाक है, सिगरेट पीना बहुत खतरनाक है, इसके द्वारा ये भी हो सकता है कैंसर हो सकता है, आदि आदि बातें कही। और उसके बाद उसने सबको कहा कि आज से जो सिगरेट पीना छोड़ देंगे वो हाथ खड़ा करें। तो सबने हाथ खड़ा किया, उसमें ये जॉनसन साहब ने भी हाथ खड़ा किया। तो वो प्रीस्ट जो है वो जॉनसन साहब को जानता था, तो इसलिए प्रीस्ट ने जॉनसन साहब को कहा कि सिगरेट पीने का छोड़ना कोई माटी का घर नहीं है, बहुत कठिन बात है। तो जॉनसन साहब ने बहुत हंसी का जवाब दिया कि मैं जानता हूँ, मैंने 51 बार प्रण लिया हुआ, 51 बार निश्चय किया है कि मैं सिगरेट छोड़ूंगा, मैं छोड़ूंगा। इस प्रकार से हम भी सब जॉनसन साहब जैसे ही है, हम कहते हैं ये छोड़ेंगे छोड़ेंगे, कहीं क्या कहते हैं क्रोध छोड़ेंगे, कहीं कहते हैं रोना छोड़ेंगे, कहीं कहते हैं मोह छोड़ेंगे, अपन तो क्या करते हैं टेम्पररी छोड़ते हैं फिर वापस आ जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कल बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प के द्वारा हमारे में क्या है, हम संकल्प तो करते हैं परंतु संकल्प के अंदर दृढ़ता नहीं होती है। मातेश्वरी जी का हमने जीवन अनुभव किया था, हमारे साथ में मातेश्वरी जी हमारे घर में ही रहे थे 18 मास। तो मातेश्वरी जी का हमने कहा, मैंने पूछा था मातेश्वरी जी को कि मातेश्वरी जी आपने आप तो बाद में आए, मातेश्वरी जी को भी 7 दिन का ज्ञान सुनाने के लिए एक बहन थी, उसने ज्ञान दिया, तो मतलब पहले और भी बहनें आ गई, उसके बाद मातेश्वरी जी आए। परंतु मैंने मातेश्वरी जी को पूछा कि आप इन सभी बहनें जो आपसे आगे आई हुई थी, पहले आई हुई थी ज्ञान में, उन सबको ओवरटेक कर करके आप मातेश्वरी का पद प्राप्त कर कैसे किया, आप में कौन सी ऐसी विशेषता थी जिसके आधार पर आप आगे बढ़ करके मातेश्वरी जी के पद पर पहुंच गए। तो मातेश्वरी जी ने कहा कि ऐसे तो बहुत सी बातें हैं। मैंने कहा बहुत सी बातें तो है, हम भी जानते हैं, परंतु उसमें इन सब में मुख्य बात क्या है जिस बात के आधार पर आप आगे बढ़ गए हो, आगे बढ़ सकते हो और इतना ऊंचा पद प्राप्त किया है। तो समझ करने की बात करने बताया मम्मा ने कि मेरे संकल्प में दृढ़ता होती है। एक बार जो मैं नक्की करती हूँ कि ये नहीं करना, मना नहीं करना, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा एक एग्जाम्पल बताओ कि दृढ़ संकल्प किस प्रकार का आप करते हो। तो उन्होंने बताया कि कराची में बाबा अलग रहते थे, सोल्जर बाजार बाबा अपने क्लिफ्टन पर रहते थे और मम्मा सोल्जर बाजार आदि में रहते थे, तो इसके कारण ज्यादा मुलाकात नहीं होती थी। तो एक रात को बाबा की याद में उन्होंने बहुत रोया और जो तकिया होता है पिलो जो होता है वो भी गीला हो गया, इतने तक मम्मा ने रोया। तो दूसरे दिन बाबा को मालूम पड़ गया कि मातेश्वरी जी ने इस प्रकार से बाबा की याद में बहुत रोया, वो प्रेम का आंसू होता है। तो इसके कारण बाबा ने मातेश्वरी जी को बुलाया और बाबा ने कहा कि बच्ची रोना नहीं चाहिए, रोना जो होता है वो विधवा रोती है, इस प्रकार की बाबा ने उनको बात कही। तो बाबा ने कहा और मामा ने कहा कि मैंने दृढ़ संकल्प कर दिया कि उस दिन के बाद मैं कभी भी आंख में आंसू, मैंने कहा दुख का आंसू नहीं सुख का आंसू, का कोई भी प्रकार का आंसू, क्योंकि जब आंख में आंसू आता है तो सामने वाला कैसे क्या समझेगा, तो दुख का ही आंसू समझेगा, इसलिए कोई भी प्रकार का आंसू मेरे आंखों से नहीं बीते, नहीं निकलेगा। मम्मा हमारे बॉम्बे में बटलर मेडिसिन में क्लास में बैठे थे और कानपुर वालों ने बहुत ही अच्छा मम्मा को निमंत्रण देने का टेप भर करके भेजा। जब टेप भर करके भेजा तो हमारे सारा क्लास के सबके अंदर जो है प्रेम के आंसू आने लगे, परंतु मातेश्वरी जी की आंखों में आंसू नहीं आए। हमने क्या किया, एक बार बजाया, दूसरी बार बजाया, तीसरी बार बजाया, तो अभी मम्मा के आंखों में आंसू नहीं आए। तो मातेश्वरी जी ने हमको कहा, रमेश आप कितनी भी बार बजाओ, परंतु मैंने जो बाबा के आगे प्रण लिया है कि इस आंखों से कभी भी, चाहे सुख के चाहे दुख के, कभी भी आंसू नहीं बहेंगे। आप 50 बार भी एक गीत बजाएंगे तो भी मेरे आंख से आंसू नहीं आएंगे। और हम लोग का क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, हम भूल जाते हैं, गलती फिर से वही करते रहते हैं, और इसके कारण क्या होता है, हम वहां के वहां रहते हैं और मातेश्वरी जो है एकदम हाई जंप लेकर के यज्ञ की मुख्य संचालिका के रूप में यज्ञ की हम सबकी आदरणीय अलौकिक मां बनकर के रही। तो इस प्रकार से दृढ़ता के आधार पर ये होना ही चाहिए। तो बाबा ने कल भी यही सब कहा कि दृढ़ संकल्प करो। कैसा दृढ़ संकल्प करो, ये आज सब आज से याद रखो, हम मातेश्वरी जैसा दृढ़ संकल्प करेंगे। तो जैसे मातेश्वरी जी उच्च पद प्राप्त करने के लिए सक्षम बन गई, इस प्रकार से हम भी उच्च पद प्राप्त करने के लिए सक्षम बन सकते हैं। उच्च पद प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है जो मातेश्वरी जी ने हम सबको सिखाया है, वो है दृढ़ संकल्प। जो कल बाबा ने भी कहा, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से दृढ़ संकल्प द्वारा छोड़ सकते हो, फिर से बोल सवाल पूछे, छोड़ सकते हो, जो छोड़ सकते हो हाथ उठाओ किया। और फिर बाबा ने कहा है कि बाबा का एक प्रॉमिस है, बाबा का एक प्रॉमिस है, कल बाबा ने प्रॉमिस भी हम बच्चों को दिया कि हिम्मत रखिए तो मदद बाप की साथ है। मदद का काले बाबा ने 4-5 बार मदद मदद कहा है ना, तो पहली बार ये मदद की बात आई, मदद भी बाप की मदद साथ है। और देखिए यहाँ बाप की मदद बाबा ने बोला हुआ है, बाप दादा की मदद नहीं। बाबा का अपना कर्तव्य है, ब्रह्मा बाबा का अपना कर्तव्य है, दोनों के कर्तव्यों में अलग अलग परिवार फर्क है। और फर्क को अगर हम नहीं समझेंगे तो क्या हो जाएगा। कई बार कई लोग अभी भक्ति मार्ग में यही होगा, ब्रह्मा बाप को हम परमात्मा मान लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं नहीं, बाबा और आत्मा उन दोनों का फर्क सदा ही सनातन रूप में अलग ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बाप का मदद बाप के साथ है। और बाबा ने फिर हम बच्चों के टॉन्ट लगाया, सभी के दिल में जो छोड़ना चाहते हो,
पिता फिर से आया।
ओम शांति। बाबा ने बताया, हाँ, दृढ़ संकल्प करो तो आपको एक्स्ट्रा मदद मिल सकेंगी। तो क्या हो गया, बाबा ने हम सबके हाथ में एक चाबी दे दिया। कौन सी चाबी? बाप के मदद की चाबी। मदद की चाबी क्या? दृढ़ संकल्प करो। तो दृढ़ संकल्प क्या हो जाएगा? हाँ, एक्स्ट्रा मदद की चाबी हो सकती है। बाबा ने यहाँ बाप यहाँ दादा किसी का भी जिक्र नहीं किया, एक्स्ट्रा मदद मिल जाएंगी। कारण यही है कि जैसे ड्रामा परीक्षा लेता है ना, इस प्रकार से ड्रामा मददगार भी बन सकता है। जिसको दुनिया की भाषा में कहें कि लक, लक होता है कि ये लकी है, लकी है, लकी है। कारण यही है कि उसको ड्रामा के अंदर इस प्रकार की मदद मिलती है। जिसको मदद मिलती है वो आगे बहुत अच्छी जिससे जा सकता है। तो इसलिए बाबा ने कल हम बच्चों को एक्स्ट्रा मदद की चाबी दे दिया। अब ये चाबी हमारे पास रखना है, ऐसा नहीं गंवा देने का नहीं। हम बहने माताएं क्या करते, साड़ी के पालू के अंदर चाबी बांध देती है। उस प्रकार से हम भी दृढ़ संकल्प की चाबी बांधते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा मदद मिलेंगी। और एक्स्ट्रा मदद मिलने के प्राप्ति करने के लिए क्या बाबा ने कहा, सुबह अमृत वेले। परंतु अमृत वेले के बाद, अमृत वेले के समय पर नहीं, परंतु अमृत वेला करने के बाद संकल्प को चेक करना और दिल से दृढ़ संकल्प करना तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाएंगी। अमृत वेला पर नहीं करना चाहिए। अमृत वेले में जो अपना फिक्स टाइम जो है, कोई आधा घंटा करता है, कोई पौना घंटा करता है, कोई एक घंटा करता है, जो भी जिसकी जिस प्रकार की तैयारी हो उस प्रकार से करने के बाद चेक करने का है और दृढ़ संकल्प करने का है तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिल जाएगी। और बाबा ने क्या कहा, सच्ची दिल से दृढ़ संकल्प करना, सच्ची दिल से, ऐसे ही नहीं देखता हूँ होता है या नहीं होता है, सच्ची दिल से। सच्ची दिल से क्या होता है, बाबा भी कहते हैं सच्ची दिल पर साहेब राजी। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा है सच्ची दिल से, दृढ़ संकल्प सच्ची दिल से करने का है, नहीं तो क्या हो जाएगा। सच्ची दिल से अगर संकल्प करें तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मदद मिल जाएंगी, क्योंकि नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो एक्स्ट्रा मदद के लिए क्या हो गया, सच्ची दिल से दृढ़ संकल्प करने का है। इसलिए नया वर्ष आरंभ होते हैं सवेरे उठ के अपने दिल से कहने से नहीं, अपने दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो मदद भी मिल जाएंगी। दृढ़ संकल्प करो कल सुबह और दृढ़ता संपन्न छोड़ने का संकल्प करना, क्योंकि बाप दादा देखते हैं कि संकल्प तो सब करते हैं, लेकिन संकल्प रोज करते हैं, सब कर सकते हैं। दृढ़ संकल्प करना, संकल्प करने में क्या नुकसान है, परंतु क्या होता है, लेकिन संकल्प के साथ साथ रोज कमजोरी भी हो जाती है, तो इसलिए बाप को कमजोरी देकर के दृढ़ संकल्प करना, उमंग उत्साह का गुण धारण करके करना चाहिए। उमंग उत्साह का धारण कर करके और कमजोरी जो भी होगी उसको बाप को दे देने की, और बाबा रास्ता बताते। और मदद के लिए अगर चाहिए तो बाबा ने कहा हुआ है कि महारथियों की मदद भी ले सकते हो, परंतु ये गगल हम लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि क्या होता है मैं बताऊं आपको, कारण यही है कि सब यही समझते हैं कि हम तो विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने वाले ही है। विश्व महाराजा अभी पिछले समय पर लेवल फॉरेनर्स की क्लास में जानकी दादी ने बहुत दो प्रश्न पूछ करके सबको रियलाइजेशन कराया। दादी जानकी ने पूछा सबको कि सभी अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है, जो संतुष्ट नहीं है वो हाथ खड़ा करे, ऐसे दादी जानकी ने वहां पर पूछा था। तो किसी ने भी असंतुष्टता का हाथ नहीं खड़ा किया, माना सबने बताया कि हम अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट है। तो फिर दादी ने दूसरा प्रश्न पूछ लिया और सबका जो था वास्तविकता, सबको वास्तविकता दिखा दी। बाबा ने दादी ने कहा अगर आप पुरुषार्थ से संतुष्ट है तो क्या अब के पुरुषार्थ जो अब कर रहे हो इस पुरुषार्थ के आधार पर क्या आप विश्व महाराजा विश्व महारानी बन सकते हैं? जो विश्व महाराजा महारानी बन सकते ऐसा पुरुषार्थ करते हो हाथ खड़ा करो। तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो दादी ने कहा कि पहले तो कहते हैं हम अपने संकल्प पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, और फिर मैं जब पूछती हूँ कि इस संकल्प के आधार पर इस पुरुषार्थ के आधार पर विश्व महाराजा महारानी बन सकते हैं, तो नहीं बन सकते, इसलिए आपने हाथ नहीं खड़ा किया। हाँ तो फिर जब बन नहीं सकते इस प्रकार के आपको रियलाइजेशन है, तो फिर आप अपने वर्तमान के पुरुषार्थ से संतुष्ट कैसे हो सकते हो? इस प्रकार से मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान इस प्रकार की बातों के आधार पर मिथ्या बातों में रह करके अपने आप को बहुत कुछ समझ लेकर करेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए राज बाबा ने कल भी कहा महारथियों का मदद भी ले सकते हो। फिर बाबा ने कल नया दिन आज की दुनिया में जानते हैं वैलेंटाइन डे फादर्स डे लेबर डे इस प्रकार से मनाते हैं, बाबा ने आध्यात्मिक तरीके से कल का दिन मनाने के लिए बहुत अच्छी बात कही है। कईयों ने नोट नहीं किया है, मैंने देखा, मैंने आज सुबह दो तीन भाई बहन आए थे, मैंने पूछा कि कल का दिन कैसे मनाने का था, वो बाबा ने बताया आपको याद है, तो कहा नहीं। तो बाबा ने कल का दिन मनाने के लिए बाबा ने कहा आज का दिन दृढ़ता का दिन मनाओ। हर वर्ष 31 दिसंबर तो आएंगी, हर वर्ष 31 दिसंबर आएंगे तो क्या करेंगे, उसको दृढ़ता का दिन के रूप में मनाना। क्या होना ही है, करना ही है, करेंगे करना ही है, करना ही, ऐसा नहीं करेंगे कहेंगे कहेंगे नहीं करेंगे, इसमें बाप दादा आपके मददगार है। उमंग को ढीला नहीं करना, और जो संकल्प किया है उसको पक्का करने के लिए क्या करने का है वो भी बाबा तरीका बताते, सब प्रकार के तरीका बाबा ने बता दिया कि जो भी नक्की किया हुआ है और वो मंग ढीला न हो जाए इसके कारण क्या करो, रोज दोहराना। और फिर बाबा ने क्या किया, आप बाप दादा को बाप को दे दो अपनी कमजोरी, और फिर क्या होगा, दी हुई चीज वापस नहीं आती है। फिर मेजोरिटी की बात आई, तीसरी बार मेजोरिटी की बात आई, मैंने कहा ना चार बार बाबा ने बात कही है। बाबा ने कहा बाप दादा देख रहे हैं कि मेजोरिटी बच्चे चाहते हैं कि अपनी कमजोरी बाप दादा को दे दो, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती है। बाप दादा खुश है कि सभी मेजोरिटी चाहते हैं, लेकिन चाहने के साथ जो शक्ति चाहिए उस शक्ति तरफ अटेंशन कम देते हो। बाबा ने बीमारी भी बता दी और बीमारी का कारण भी बता दिया कि जो चाहते हैं उस पर तो क्या कि उसकी उस प्रति शक्ति उस शक्ति के तरफ अटेंशन कम है, और इसके कारण क्या था, कौन सा शब्द ऐसा है जो हमारे पुरुषार्थ में विघ्न डालता है वो भी बाबा ने बताया, जो हो जाएगा होगा 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 ऐसा करते हैं ना, बाबा ने कहा ये हो जाएगा शब्द जो है ना वही बीच में विघ्न डालता है। ये थोड़ी मुरली गहराई में जाकर के समझे तो आपको मालूम पड़ेगा हमारे पुरुषार्थ में क्या हमको आगे बढ़ाने का साधन है, क्या हमको पीछे रखने का साधन है। इसलिए बाबा ने कहा हो जाएगा शब्द बीच में नहीं रखो, परंतु दृढ़ता और दृढ़ संकल्प बीच में रखो। इसलिए बाबा ने कहा अपने दिल में सोचो रोज अमृत वेले उस करके चेक करो कि जो संकल्प किया वो दृढ़ है। क्यों संकल्प किया वो दृढ़ है क्यों? फिर बाबा ने हमारी एक कमजोरी बताई हुई है। हम बाबा की मुरली को अच्छी रीत से पढ़े तो मालूम पड़ेगा किस बातों के अंदर हमारी कमजोरी है, किस बातों के लिए, क्योंकि बाबा डॉक्टर भी है, रूहानी डॉक्टर भी है, इसलिए हमारी गलतियां हैं कमजोरियां हैं बता देते हैं। क्योंकि बच्चों में अलबेलापन आ जाता है, आता है हम सब में अलबेलापन। बाबा ने कहा है बच्चों में अलबेलापन आ जाता है, बाबा ने कहा है तो जरूर सच होगा। इसलिए बाबा ने कहा आज के दिन कोई न कोई श्रेष्ठ धारणा अपने दिल में करो और रोज अमृत वेले उसको दोहराओ। बाबा फिर मैंने बताया, पहले आपको बता दिया कि बाबा अभी रिजल्ट देखना चाहते हैं, और इसके अंदर बाबा ने कहा कि अगर दृढ़ता के परसेंटेज में कमी हुई तो क्या करेंगे, क्योंकि पहले उमंग बहुत होता है और पीछे बाबा ने कहा कि उमंग ढीला थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, तो इसलिए उमंग को ढीला हो नहीं देना और दृढ़ संकल्प करो कि हमको करना ही करके ही दिखाना है। और बाबा ने हम बच्चों को हमारे मंदिर अंदर एक शक्ति भर दिया। पहले जमाने में थे ना कवि लोग जो होते हैं युद्ध में जाते थे ना योद्धे, तो उनको अंदर दृढ़ संकल्प भरने के लिए उमंग उत्साह भरने के लिए अच्छे अच्छे उमंग उत्साह वाले गीत भर सुनाते थे। इस प्रकार से बाबा ने भी हम बच्चों के अंदर उमंग उत्साह भरने के लिए बात बताई। क्या कि आप बच्चे तो मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं है, इसलिए कल के दिन रोज दृढ़ संकल्प करो, इस प्रकार की बात कही। और बाप दादा की मदद लेना, परमात्मा की बाप की मदद लेना, ये भी बहुत कठिन बात है। मदद लेना कईयों को आती नहीं है। बाबा की मदद कैसे ले? पूर्ण विश्वास के द्वारा, जो बाबा के ऊपर पूर्ण विश्वास रखेगा उसको ही बाबा की मदद मिलेगी, बाकी नहीं तो क्या होता है। बाबा भी कहते हैं उसका मेरे पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो क्या करेंगे। तो इस प्रकार से बाकी बाबा ने बताई, अपने हिसाब से चेक करो, संकल्प में रखो रोज सुबह अमृत वेले इसको दोहराना। फिर दिल खुश की बातें कही है बाबा ने, फिर खुशी को जाने नहीं देना। बाबा ने खुशी को जाने नहीं देना, खुशी खुश रहना और खुशी को बांटना है। और फिर जैसे पहले ऊपर बताया ना बाबा ने कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस प्रकार से बाबा ने फिर दूसरा उमंग उत्साह का इंजेक्शन दिया। बाबा ने कहा कि आप ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया हो, आपका टाइटल क्या है ये याद रखना कि मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ। और उसके बाद बाबा ने बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक रहस्य बता दिया, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी जितने बैठे हुए हैं इन्होंने ब्रह्मा बाप को और अव्यक्त बाप दादा को ब्रह्मा बाबा के तल में देखा नहीं है, तो इसलिए बाबा ने क्या कह दिया, ब्रह्मा बाप को जाना, जान तो लिया है ना आपने, भले देखा नहीं है लेकिन जान तो लिया है ना, तो मेरा बाबा है। तो इसलिए जितना बाप में मेरापन लाएंगे इतना, अर्थात मेरा बाबा उतनी सहज याद होती जाएंगी, क्योंकि मेरी बात कभी भूलती नहीं है। बहुत सुंदर बाबा ने ये मेरापन की बात की। क्या होता है, बाबा ने भी कहा हुआ है कि बाकी सब बातों में मेरा मेरा करते, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरा घर मेरा धंधा मेरा व्यवसाय मेरे पैसे, उस प्रकार से सब में मेरा मेरा करते। बाबा ने कहा उसको भूलो, अगर मेरा मेरा याद रखना है तो मेरा बाप मेरा बाप मेरा बाप, बाप को याद करो और बाप को मेरा बना दो। तो इस प्रकार से कल बाबा ने ये भी एक युक्ति बताई कि बाप को मेरा बना दो तो क्या हो जाएगा, पूरी मदद मिल जाएगी। फिर बाबा ने दूसरी एक तरीका बताया, सुबह उठ करके अपनी शक्ल देखना, शक्ल देखना। बाबा ने कहा शक्ल में क्या है, शरीर की शक्ल नहीं, यह शरीर जो है शरीर की शक्ल नहीं है, तो कोई सब जाकर के आईने में जाकर के अपनी शक्ल देखेंगे। बाबा ने कहा वो नहीं, परंतु मन की शक्ल। अब ये कठिन बात है, अब मन की शक्ल कैसे देखी जाए। पुरुषार्थ करना, हमारी जो भी टीचर्स बहने आपके सामने क्लास कराएंगी ना, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ये शक्ल कैसे देखने का तरीका, इसकी युक्ति भी जो है आप सबको सिखा दें। क्योंकि बाप दादा को मन की शक्ल देखना दिल पसंद है, फिर बाबा ने क्या कि फिर दूसरा भी एक उमंग उत्साह का बात कही है, हर रोज सुबह उठ करके क्या सोचना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन सा बच्चा हूँ, मैं वहाँ बच्चा वहाँ हूँ, ये भी युक्ति बताई। फिर ना एक बार एक के बाद एक इतनी युक्तियाँ बाबा बताते हैं, इसमें से कोई भी एक युक्ति धारण कर ले कि वहाँ वहाँ बच्चा हूँ, तो ऐसे सदा वाह वाह रहेंगे, अटेंशन देंगे इस प्रकार से उसके लिए हाथ उठाओ। सुबह सुबह को उठते ही यह वाह वाह शब्द याद करना, और बाप दादा भी देखेंगे कि आप कैसे वाह वाह बनते हो। फिर बाबा ने दूसरी एक बात कही, इतनी युक्तियां बताई है कल की मुरली में कि हम इसमें से एक भी युक्ति धारण कर ले, सामने बहुत ऑप्शन है, इसमें एक युक्ति का दूसरा ऑप्शन है। बाबा ने कहा है कि आज बाबा बाप दादा विशेष दृष्टि दे रहे हैं, विशेष दृष्टि। बाबा की दृष्टि आप जानते हैं ना, वो अव्यक्त दृष्टि होती है, साक्षात्कार की दृष्टि होती है, वो विशेष दृष्टि है। किस बात के लिए? बाबा ने कहा विशेष दृष्टि दे रहे हैं वाह वाह रहने के लिए, रहेंगे ना तो वाह वाह शब्द कभी भूलना नहीं। वाह वाह शब्द हूँ ही वाह वाह तो क्या होगा, खुशी हो जाएंगे। इस प्रकार से बाबा ने वाह वाह की बातें कही है। और फिर बाबा ने फिर दोबारा याद कराया, नई तरीके बताया, कल से रोज अमृत वेले अपना चेहरा देखना। और भी परंतु कौन सा चेहरा, जैसे ऊपर बताया ना मन की बातें बताई, इस प्रकार से मन की शक्ल की बात बताई, इस प्रकार से यहाँ बताया अंदर का चेहरा, बाहर का चेहरा नहीं परंतु अंदर का चेहरा, बाहर का चेहरा नहीं। और चेक करना वाह वाह है। फिर बाबा ने एक दूसरा स्लोगन दिया, बहुत सुंदर स्लोगन है, अगर उसको भी याद रखे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। बाबा ने कहा है कि बाप दादा वाह वाह तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे भी वाह वाह होंगे। हम कौन है? वाह वाह बाप के, वाह वाह बच्चे। ये स्लोगन याद रखो और जीवन सफल हो जाएगा। बाबा कहते ये शब्द याद रखना। और कभी भी मूड ऑफ हो जाए ना, मूड तो हमारा चेंज होता है ना, ऊपर नीचे होता है। एक पिक्चर हमने देखी थी अविनाश, एक डांसर ने बनाई थी, उसके अंदर यही आता है कि उसका मूड का जैसे टेम्परेचर शरीर का ऊपर नीचे होता है, यहाँ वायुमंडल के अंदर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, इस प्रकार से मूड का टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है। तो बाबा ने भी कहा कि कभी आपका मूड ऑफ हो जाए ना तो वाह वाह शब्द को याद रखना। ऐसे कह करके बाबा ने अच्छा किया शब्द का मुरली पूरी करने का कोशिश, अच्छा शब्द से मुरली पूरी करते हैं या तो चेंज करते हैं। फिर बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि बाप दादा मिला ना तो बाप को भी बच्चों के सिवाय चैन नहीं आता है, बाप को भी बच्चों के सिवाय चैन नहीं आता है। तो मेरा, मैं वकील हूँ ना, तो वकीलों की बुद्धि जो है ना थोड़ी टेढ़ी चलती है, क्योंकि वकील की जीभ में हड्डी नहीं होती है। तो इसलिए हमने बाबा को सुबह सुबह ये दोबारा ये पढ़ा, मैं मुरली यहाँ क्लास के लिए पढ़ता था, उसके लिए हमने कहा कि बाबा को चैन नहीं आता है। तो हमने बाबा को कहा बाबा चैन नहीं आता है ये तो आप मुख के लड्डू खिला देते हो, अगर चैन नहीं आता है तो सतयुग त्रेता में भी आइए ना, सतयुग त्रेता में क्यों नहीं आते हैं, चैन आते क्यों नहीं है। तो फिर हमने ये आर्ग्यूमेंट किया, तो बाबा ने उल्टा आर्ग्यूमेंट किया कि मुझे तो वहां तो बच्चों मिलता है ना, परम धाम में हम रहेंगे, थोड़े ही सत्योगी आदमी आएंगे, थोड़े थोड़े आते रहेंगे और द्वापर के तक तो सभी धर्म स्थापक की भी आत्माएं ऊपर होंगी, सभी धर्मों के आत्माओं भी ऊपर होगी, उसने ऊपर तो बहुत भीड़ होगी, इसलिए बाबा को ऊपर सभी बच्चों की कंपनी मिल जाती है। और इसलिए हम थोड़े बच्चे यहाँ होंगे तो थोड़े के लिए क्यों आएगा, परंतु फिर बाद में आएंगे। और संगम युग में क्यों आते हैं, एक मैं हंसी की बात बताऊं, संगम युग में क्या होता है, क्योंकि बाबा का ऊपर का परम धाम का घर खाली हो जाता है, बहुत थोड़े रहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं नीचे आ जाता हूँ। तो वो भी मतलब बात वही होती है, परंतु किस दृष्टिकोण से आप बाबा के साथ आर्ग्यूमेंट करो। मैंने देखा है साकार बाबा और अव्यक्त बाबा दोनों के साथ आप आर्ग्यूमेंट करो तो बाबा खुश होता है। मैंने एक बार आर्ग्यूमेंट किया तो बाबा ने यही कहा कि बच्चा आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा करता है, तो आप बाप दादा के साथ आर्ग्यूमेंट करना भी सीखो, प्यार से आर्ग्यूमेंट, मोहब्बत का आर्ग्यूमेंट। फिर बाबा ने चक्कर लगाने की बात कही है, कैसे कैसे चक्कर लगाता हूँ। बाबा ने फिर कहा कि कोई भी बात आती है तो उसको छोड़ दो, बात तो चली जाएंगी, आप अपनी बात को पकड़ करके रखो। कोई भी बात होना वह बात बात वाह वाह में समा देना, बात को नहीं रखना, बाप और आप बस। कितना सुंदर प्रास है, बाप और आप बस और कोई नहीं। अच्छा करके गुड नाइट कहा। फिर बाबा ने गुड नाइट के बारे में आगे बताया कि आज गुड नाइट बाबा ने, बाप दादा ने गुड नाइट की, आप आपस में भी गुड नाइट करके सोना। सभी बच्चों के बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, जहाँ चल रहा है, यहाँ जहाँ चल रहा है, लेकिन सभी को बाप दादा देख रहे हैं, कितने में चक्कर लगाया आदि की बात कही। और फिर बाबा ने गुड नाइट कहा, कुल चार बार कहा हुआ है, चौथी बार महाराष्ट्र के साथ बात किया है, उसमें भी कहा है अच्छा है नाम ही महाराष्ट्र है तो महान तो हो गए, फिर भी क्या होता है, महाराष्ट्र वालों के भी बाबा ने चाबी लगा दी। बाबा ने कहा फिर भी हाँ महाराष्ट्र है, महान है, बाबा के तो थोड़ा थोड़ा सभी भूल जाते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा गुड नाइट, आप जाके खा के सोना, बाकी गुड नाइट याद रखना। इस प्रकार चार पांच बार बाबा ने गुड नाइट याद किया। फिर डबल फॉरेनर्स और सिंधी भाई बहनों के लिए बात की, करीब 500 लोग आए हुए हैं। फिर बाबा ने उसके लिए भी कहा बहुत अच्छे स्नेही है, सहयोगी भी है, स्नेही भी है। ऐसा कर करके मुरली पूरी हुई, 9:31 बाबा ने अव्यक्त मुरली पूरी की। फिर क्या हो गया, स्टेज का कारोबार चल रहा, स्टेज के अंदर पहले मिली, उसके पहले याद प्यार दिया, चारों ओर के देश विदेश के सभी बच्चों को बाप दादा सामने से याद प्यार दे रहे हैं, बाप दादा के सामने एक सेकंड में सभी इमर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार से बाबा ने याद प्यार दिया, 9:33 को याद प्यार समाप्त तो हुआ। फिर स्टेज का कारोबार हुआ, बाबा ने नीलू बहन जो है गुलजार दादी की तबीयत का ध्यान रखती है, बहुत अच्छी मेहनत करती है, उसके लिए बाबा ने अच्छी बात कही। फिर मोहिनी बहन को जन्मदिन की बात कही, निर्मल भाई ने भी कहा कि सभी ने अच्छी सेवा किया है। फिर मैंने बाबा को गुलदस्ता भी दिया और 2 कैसेट सीडी दिया, एक तो हमारी सुनीता बहन जो है सूरत की, उसने स्टूडियो के द्वारा नारी तो दर्शन की सीडी बनाई है, 8-10 एपिसोड उसमें किया हुआ है, बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है, तो बाबा के द्वारा उसका इनॉग्रेशन कराया नारी तो दर्शन का। और दूसरा गॉडलीवुड स्टूडियो के द्वारा दादी प्रकाशमणि के जीवन चरित्र की एक सीडी बनाई है, वो दोनों सीडियां जो है अपने लिटरेचर डिपार्टमेंट या तो ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट से मिलेंगी। दादी प्रकाशमणि के जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उनके जीवन के बारे में बताइए, दोनों का कल इनॉग्रेशन हुआ, आप में से जिसको भी वो चाहिए नारी तो दर्शन या तो दादी के जीवन का दर्शन का वो ले सकते हैं। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा बहुतों ने याद प्यार दिया है, तो बाबा ने उसके लिए हमको जवाब दिया, जिसने याद किया दिया है उन सबको नाम लेकर के कहना बाप दादा ने याद दी है। कारण क्या था कि हमारी दूरी स्विंग जो है ना बाबा की, उसकी मीटिंग चल रही थी, तो हमने मीटिंग में सबको कहा कि आप बाप दादा को याद प्यार का पत्र लिख करके दो, साइन करके दो, तो मैं स्टेज पर मुझे जाने का सौभाग्य मिलता है, तो मैं आपका बाबा को आपका जो है याद प्यार दे दूंगा। हमने बाबा को ये याद प्यार दिया और बाबा ने कहा, मैंने बाबा को कहा कि बहुतों ने आपको याद प्यार दिया है, तो इस प्रकार से इसने बाबा ने सभी जूरी शादी जो भी है और भी कईयों ने याद प्यार दिया था, उन सबको बाबा ने कहा नाम सहित याद प्यार देना जी। फिर बनारसी भाई की बात आई, बनारसी भाई ने भी दादी गुलजार के लिए बॉम्बे में और अहमदाबाद में बहुत ही उनके बाबा के रथ की बहुत बहुत अच्छी तरह से सेवा की हुई है, वो भी बाबा ने याद किया, इसने रथ की सेवा बहुत अच्छी की है, दिल से सेवा करते हो, यह भी सबको भाषणा आती है, पेशेंट को भी भाषणा आती है। तो इस प्रकार से कल के अव्यक्त मुरली जो है बाबा ने फिर इस प्रकार से बाबा ने बाद में आप सब जानते हैं दीपक प्रगट्या दीपक प्रज्वलन किया, यहाँ सामने बाबा उठ करके आए, उसके बाद बाबा ने केक कटिंग किया और केक कटिंग करके बाबा को दादी ने और सबने भोग खिलाया, और इसके बाद आप सब जानते हैं हाँ कि बाबा ने विदाई लिया, 10:10 में बाबा ने विदाई लिया। इस प्रकार से आप गिनती करें 7:58 2 मिनट वो और 1:10 ये। कल बाप दादा हमारे साथ 1:12 रहे स्थूल वतन में, स्थूल रूप में, स्थूल शरीर में 1:12 रहे, इसलिए याद कराता हूँ कि भक्ति मार्ग में तो खाली एक बार साक्षात्कार हो जाए तो भी हम अपने आप को धन्य मानते हैं, और कल क्या हो गया, यह साधारण अपने बाबा अपने रथ के अंदर बाप दादा ने दिव्य अवतरण कर करके हमारे साथ 1:12 हमारे सन्मुख हमारे सामने, चाहे यहाँ पर देखने वाले चाहे वहाँ भी देखने वाले, इन सब ने देखा मिला, तो इसलिए ये संगम युग के अंदर परमात्मा से साकार रूप में मिलने का सौभाग्य प्राप्त करना, इसी को इसलिए कहते हैं संगम युग। संगम युग माना ही श्रेष्ठ प्राप्ति का युग, और इसके अंदर श्रेष्ठ प्राप्ति अर्थात बाप दादा से मिलन मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करें, स्थूल आंखों में स्थूल लाइनों से बाप दादा को देख सकते हैं, और उसमें भी आज के जो यह स्क्रीन बने हुए स्क्रीन के द्वारा देखते हैं, तो बाबा की हर हरकतें जो भी है, जो भी व्यवहार है, जो भी कर्तव्य है, उसको हम आराम से शांति से देख सकते हैं, कैसे गुलजार दादी बाबा के पास गई, कैसे बाबा का दिव्य अवतरण उनके शरीर में हुआ, उनके रथ में हुआ, और लास्ट में 10:10 पर कैसे हमारे मधुरवाणी ग्रुप जो है गीत गाता रहा, और इतने में बाबा चले गए अपने वतन में और गुलजार दादी को भेज दिया, आधे मिनट के अंदर बाबा ने विदाई लिया और उसी आधे मिनट के अंदर गुलजार दादी वापस आ गई। तो इस प्रकार से कल का कार्यक्रम जो भी है पूरा हुआ, और हम सबको बाबा ने जो नए वर्ष की बधाइयां दिया है, नया वर्ष का ये उमंग उत्साह जो है सदा ही हमारे जीवन में रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम सबका यहाँ आना जो है वो सफल हो जाएगा, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसको जीवन में धारण करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस सफलता के आधार पर हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसलिए आप सबको भी बधाइयां हो कि आप सब ने जो यहाँ बैठे हुए उन्होंने तो साकार रूप में परमात्मा मिलन का दिव्य अनुभव किया, तो इस प्रकार से ऐसा दिव्य अनुभव करते रहना, और इस दिव्य अनुभव की खूबी जो कहो, उसकी जो महत्वता जो कहो, उसकी जो इम्पोर्टेंस जो है, उसको जीवन में धारण करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बाबा जैसे महान है इस प्रकार से हम भी मास्टर महान, मास्टर सर्वशक्तिवान बन सकते हैं, और हमारा जो टाइटल जो है बाबा ने जो कल कहा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, वो हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, अर्थात जीवन के संगम युग के बाकी का समय जो है अच्छे में अच्छी रीति से व्यतीत करना हो तो कल की मुरली के आधार पर कोई ना कोई कमजोरी जो है निकाल दो। एक ने हमको बहुत अच्छी बात कही कि बाबा ने एक ही कमजोरी निकालने के लिए कही है क्या, मैंने कहा नहीं, ये तो हमारे हाथ में है, बाबा ने तो इशारा दे दिया हमारे हाथ में है, एक से ज्यादा सबकी सब कमजोरी निकाल दे तो और ही अच्छा, नहीं सभी नहीं निकाल सकते तो जितनी हो सके इतनी ज्यादा कमजोरी निकालना। कल की मुरली का प्लीज गलत अर्थ मत उठाना कि हमको एक ही कमजोरी उठानी है, बाकी सब कमजोरी अपने पास रखना, ऐसा नहीं आस्ते आस्ते एक के बाद सभी कमजोरियों को उठा निकालते जाओ और इससे क्या हो जाएगा, देवता बन जाएंगे। देवता कौन होता है? जिसके जीवन में कोई भी प्रकार की कमजोरी नहीं होती है, तो इसलिए हमको देवता बनना है। तो कल जो बाबा ने कहा इस प्रकार से सुबह अमृत वेले के बाद चेक कर करके हर एक कमजोरी को कहाँ तक निकाला है, परसेंटेज में तो नहीं आ गया है, इस प्रकार से कारोबार करना है। तो इसलिए आप सब बाबा ने जैसे कहा इस प्रकार से अपनी कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करो और श्रेष्ठ गुण धारण करो, श्रेष्ठ शक्तियां धारण करो, यही शुभेच्छा। फिर से आप सबको नए वर्ष की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी एक मिनट हम बैठेंगे, योग करेंगे और फिर क्लास समाप्त करेंगे, फिर आज का यहाँ कार्यक्रम स्टेज पर होने वाला है वो सब हम देखेंगे, सब बैठे रहना।
दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, निभाए वो पूरा वादा। दिल से
कहो मेरा बाबा।